भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
श्रीमद्भागवतम अध्याय एक स्कंद एक अध्याय एक श्लोक संख्या छः। श्री ऋषय उचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्य आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदु वेत्थत्वं सोम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदता। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमात्मस्मि भूर्तेर्महद्भियः इमा पुरो विभू निर्माय शेते यदमोष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सुलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजान्द्रे हरे कृष्ण आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। क्षमा कीजिएगा, आज हमारा जो आवाज है वो पहाड़ की तरह जाड़ा आ रहा है। तुम यहाँ पर नित्यम भागवत श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की कृपा से देखा जाए तो हम जिस ग्रंथ का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में और भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण इत्यादि पुराणों में कथा है कि जब द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला संपन्न करने के बाद अपने नीच धाम गोलोक वृंदावन में जा रहे थे, तो किसी को नहीं पता था कि कृष्ण जा रहे हैं। केवल एक कृष्ण के जो प्रिय मित्र प्रिय सखा उद्धव जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहे कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था वो कार्य मैंने संपन्न कर दिया है। भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्मों की हानि होती है अधर्म बढ़ता है तब असुरों का विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धाम पर अवतरित होते हैं। तो भगवान ने बहुत कार्य किए, असुरों का वध किया, धर्म की स्थापना की, अपने भक्तों के लिए माधुर्य लीला का आस्वादन करवाया, कई प्रकार की लीला रची भगवान ने। तो अपना संपूर्ण कार्य संपन्न करके जब भगवान अपने निज धाम में जा रहे थे तो उद्धव जी बहुत दुखी हुए। उद्धव जी के बारे में आप सब जानते होंगे, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे, घनिष्ठ मित्र थे और साधारण व्यक्ति नहीं थे। उद्धव जी संसार की समस्त डिग्री प्राप्त करने के बाद, इस संसार में जितने भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्वर्ग में गए थे विद्या प्राप्त करने के लिए। विष्णु नाम प्रवरो मनु, स्वर्ग में विद्या प्राप्त करके आए थे। इस संसार में ज्यादा से ज्यादा कोई लंदन जाता है, अमेरिका जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय सखा प्रिय मित्र उद्धव जी हेवन रिटर्न थे, स्वर्ग रिटर्न, स्वर्ग से विद्या प्राप्त करके आए थे। तो जब भगवान धाम में जा रहे थे तो लिखा गया है यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गंतु सुद्धतः, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में जा रहे थे, कहते एकादशम परिश्रुत्वा अपि उद्धव वाक्यम ब्रवीत, तब उद्धव जी इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे। क्या कहे उद्धव जी? तो कहते हैं त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्ये विधाय च मयि यते महती चिंता तो श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी अपने प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण तुम अभी इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हो तो इस बात को लेकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा शोक और दुख उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए भगवान ने पूछा क्यों दुख हो रहा है, क्यों शोक हो रहा है, तब उद्धव जी कहते हैं आगतो अयम कलीर घोरो। कृष्ण अब तुम जा रहे हो और द्वापर युग संपन्न होने जा रहा है और इस द्वापर के बाद कलयुग आ रहा है और ये जो कलयुग है कलेर दोषे निधे राजन, ये कलयुग जो कलयुग आने वाला है वह कलयुग दोषों का खजाना है। इस कलयुग में दोष के अलावा पाप के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे घोर कलयुग आने वाला है और तुम जा रहे हो तो इस कलयुग के जीवों का क्या होगा। उद्धव जी इस भाव से कहते हैं आगतो अयम कली घोरो भविष्यन्ति पुलकला। और तुम जानते नहीं हो भविष्य में बहुत बड़े बड़े खल और पापी जन्म लेंगे, तत्संगेन नैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम यदा। और ऐसे खल और पापियों को संत का समागम नहीं होगा, आप जैसे भगवान का की कृपा नहीं होगी तो वह आगे चलकर उग्रताम इस धराधाम पर बहुत ही बड़े आतंक फैलाएंगे। और जब आप चले जाओगे और इस धराधाम पर पापियों का जन्म होगा, बहुत बड़े बड़े पापी पाप करना प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक आप जिस गाय के पीछे आप जिस गाय के रखवाले हो, 84 लाख गाय को आप रखे हो और उसके पीछे नंगे पांव दौड़ते हो, ऐसी गायों को वध करने वाले लोग इस कलयुग में जन्म लेंगे और पाप के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और जब यह पापी लोग पाप करना प्रारंभ करेंगे तो यह पृथ्वी जो है पाप के भार से भारी हो जाएगी। कहते हैं तदा भारवती भूमि गो रूपेयम कमाश्रयेत। तो जब यह पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ेगा तब यह पृथ्वी किसके शरण में जाएगी। आप इस धराधाम पर रहोगे नहीं तो यह बिचारी पृथ्वी का क्या होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब आप चले जाओगे तो पाप होना प्रारंभ होगा। तो अन्यो न दश्यते त्राता त्वत कमल लोचन। हे कमल लोचन, हे कमल के समान लोचन नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण मित्र, कृपया करके तुम इस धाम को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम चले जाओगे तो इस संसार में क्लेश के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सल मा व्रज भक्तार्थ स गुणो जातो निराकारो अपि चिन्मय। इसलिए हे कृष्ण तुम तो अपने भक्तों को आनंद देने वाले हो तो अपने कम से कम अपने भक्त के ऊपर दया रखते हुए कृपया करके आप इस धाम को छोड़कर मत जाओ। तो इस प्रकार से उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को विनय कर रहे हैं कृपया करके तुम इस पृथ्वी पर रुक जाओ, इस पृथ्वी को छोड़कर इस धराधाम पर छोड़कर मत जाओ। त्वदी योगेन ते भक्ता कथम स्थास्यनी भूतले निर्गुणो पराने कष्टम अत क्वचित विचारय। उद्धव जी कहते हैं आपके वियोग में आपके जो भक्त हैं वो बेचारे दुखी होकर रोते हुए इस भौतिक संसार को छोड़कर मृत्यु को पाप प्राप्त करेंगे, इसलिए इति उद्धव वचम श्रुत्वा। तो उद्धव जी ने इस प्रकार से बहुत विनय किया भगवान श्री कृष्ण के आपको कि आप रुक जाओ रुक जाओ। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से यह दुख भरे शब्द सुने इति उद्धव वचम श्रुत्वा, इस प्रकार से भगवान उद्धव जी के वचन सुनकर प्रभासे अचिंत यत हरि, भगवान हरि भी चिंतन करने लगे कि अब कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए क्या किया जाए, मुझे इस पृथ्वी को छोड़कर मेरे धाम में तो जाना ही है, लेकिन ऐसा क्या करके जाऊं ताकि इस कलयुग में आने वाले लोग इस पापों से बचकर मुझे प्राप्त कर सके। तो भगवान भी चिंतन करने लगे ऐसा क्या करो क्या करो। तो उस वक्त भक्तावलंब नार्थाय किम विधेय भवेति च, भगवान सोचने लगे कि भक्तों के उद्धार के लिए मुझे क्या करना है क्या करना है। तब उस वक्त बहुत ही सुंदर लीला हुई, एक आश्चर्यमय घटना हुई, और वह घटना यह थी कि स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते अध्यात। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दे रहे थे। तो इस संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए उस समय भगवान श्री कृष्ण जिस भागवत से उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम, भगवान श्री कृष्ण इस संसार के जीव पर कृपा करने के लिए देख उद्धव जी के देखते ही देखते उस भागवत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण आविष्ट हो गए, प्रवेश किए। भगवान श्री कृष्ण उस भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर दिए, उद्धव जी के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण भागवत के अंदर चले गए। कैसे भागवत के अंदर, कहते हैं श्रीमद भागवत अर्णवम, ये जो भागवत रस का सागर है, इसे रस के सागर रूपी भागवत में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। और तेने वो वांग मई मूर्ति, इसलिए ये ग्रंथकार कहते हैं कि जो भागवत है ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है, साक्षात भगवान है। श्रीमद भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान है, इस लीला से यह हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और सेवतान श्रवणात पाठात दर्शनात पाप नाशिनी, और अगर कोई व्यक्ति इस भगवान रूपी भागवत का श्रवण करता है, श्रवण करने की बात दूर रही, अगर कोई देख लेता है अपने जीवन में इस भागवत को, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इस भागवत को सुष्टु रूपेण श्रवण करता है, तो इसी जीवन में बहुत कम समय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण को प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है इस भागवत को श्रवण करके। क्योंकि यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और उसके सबसे बड़े सबूत है उद्धव जी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश किए, एकमात्र कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए। आगे आने वाले कलयुग में लोग यह जाने, इस भागवत को पढ़कर मेरे पति प्रेम प्राप्त करे, इस आशा को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण उस भागवत में प्रविष्ट हुए। तो उस आशा को ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा हम सब उस भगवान की वांगमयी मूर्ति, साक्षात भगवान का स्वरूप जो है श्रीमद् भागवतम, उस भागवतम का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। और इस भागवतम का श्रवण करते करते बहुत जल्द इस संसार से विरक्ति प्राप्त होगी और कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति प्राप्त होगी। तो निरंतर हम यहाँ पर इस भागवत का आस्वादन कर रहे हैं और यहाँ के भक्तों की ऊपर बहुत अच्छी कृपा है गुरुजनों की, भगवान की, कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से ही हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में, इस प्रथम तीन श्लोक में व्यासदेव जी का मंगलाचरण हमने श्रवण किया, और तत्पश्चात व्यास देव जी कथा प्रारंभ करते हुए लिखते हैं नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषय सुनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मासत। व्यास देव जी इस कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, कि अनिमिष क्षेत्र, भगवान विष्णु के उस क्षेत्र में जिसका नाम है नैमिषारण्य, वहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। कहते हैं सत्रम स्वर्गाय लोकाय, बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए है, और यह यज्ञ सहस्त्र सम मासत 1,000 साल तक चलने वाला था। तो उस यज्ञ के दौरान तल एकदा तु मुनि प्रात हुत हुताग्नय सत्कृतम सुत मासिनम प्रपच्चु रीद मादरात। तो यज्ञ संपन्न करने के दौरान दरमियान एक बहुत ही बड़े विरक्त संत जिसका नाम है सूत गोस्वामी, सूत तो उसकी जाति का नाम है, वास्तविक उसका नाम है उग्र शवाजी, लेकिन वह सूत गोस्वामी के नाम से प्रख्यात है, इसलिए हम भी उसे सूत गोस्वामी ही कहेंगे। तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत गोस्वामी पधारे, और जैसे ही 88,000 ऋषि मुनियों ने देखा कि सूत गोस्वामी आ रहे हैं, जितना भी हवन का जो भी कार्य था सब बंद किया, कि सब लोग भागवत कथा सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे, यज्ञ करना तो एक बहाना था। तो जैसे ही सूत गोस्वामी वहां पर आए, सूत गोस्वामी को एक बहुत ही सुंदर आसन दिया गया, बहुत ही बड़ा आसन जिसे व्यास आसन कहा जाता है, उस आसन के ऊपर सूत गोस्वामी को विराजमान किया गया। सबसे पहले सूत गोस्वामी की पूजा की, और पूजा करने के बाद 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्वर में एक साथ प्रच्छु इदम आदरात, इस प्रकार से आदर से सूत गोस्वामी को 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब आज से प्रश्न प्रारंभ हो गए कि 88,000 ऋषि मुनियों ने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो सबसे पहले 88,000 ऋषि मुनि एक साथ जब बोलने लगे तो कैसे सुनेंगे, सुनाने वाले एक है और सुनने वाले 88,000 लोग बैठे हैं, तो 88,000 व्यक्ति एक साथ प्रश्न पूछने लगेंगे तो बेचारा बोलने वाला क्या करेगा। तो फिलहाल तो सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर सेट किया जाएगा कि 88,000 में से एक को ही प्रश्न पूछना है। लीडर बनाएंगे सोनक जी को, और सोनक जी प्रश्न पूछेंगे और सूत गोस्वामी उसका उत्तर देंगे। तो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई हमारी और आपकी तरह अज्ञ व्यक्ति नहीं बैठा है, 88,000 ऋषि मुनि जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्र के ज्ञाता थे और भगवान के परम भक्त थे, इसलिए किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है वे लोग जानते थे। प्रश्न पूछने में भी नम्रता होनी चाहिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है सबसे पहले तो यह जानना है हमें। प्रश्न पूछना है सूत गोस्वामी को, लेकिन इस प्रकार से पूछना है, आदर के साथ, नम्रता के साथ। तो प्रश्न पूछने से पहले दो श्लोक में या तीन श्लोक में सूत गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं 88,000 ऋषि मुनि। सबसे पहले हमें कभी भी प्रश्न पूछना हो तो जिसे प्रश्न पूछते हैं उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। तो किस प्रकार से 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न पूछने से पहले प्रशंसा कर रहे हैं, और ये झूठी प्रशंसा नहीं है, संसार के लोगों की तरह सत्य बात कह रहे हैं। तो आइए आज से हम प्रारंभ करते हैं श्री ऋषय ऊचु। ऊचु का अर्थ होता है बोले, ऋषय 88,000 जो ऋषि मुनि नैमिषारण्य में थे वे इस प्रकार से बोले। क्या बोले? तो कहते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातन्यप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि चान्यत। अब देखिए 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को, जैसे हम कहते हैं प्रभु जी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो प्रभु जी जो है वह संबोधन है, उसे संबोधन कहा जाता है। तो सूत गोस्वामी के प्रति हे सूत जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को संबोधन दे रहे हैं। अरे संबोधन ही इतना गुह्य है कि इसके ऊपर ही पूरा प्रवचन हो सकता है। 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को कहते हैं हे अनघ, कहते हैं त्वया खलु पुराणानी से इतिहासानी चा अनघ। हे अनघ, हे अनघ कहते हुए सूत गोस्वामी का अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रभु जी इत्यादि, माता जी प्रभु जी, वैसे 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को अनघ कह रहे हैं। और वास्तव में सूत गोस्वामी अनघ थे, इनमें कोई दोराय नहीं है। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप, जिसने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, कपट नहीं किया है, जो पाप से मुक्त है, अपराध से कपट से जो मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को अनघ कहा जाता है। तो जिससे ये 88,000 ऋषि मुनि प्रवचन सुनना चाहते थे वह व्यक्ति अनघ थे, उसने अपने जीवन में कभी भी किसी का अपराध नहीं किया था, पाप नहीं किया था, और सूत गोस्वामी को थोड़ा भी कपट नहीं था। ये सत्य बात है, इसलिए 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को अनघ कह रहे हैं। वास्तविक में जो गोस्वामी होता है, जो कथाकार होते हैं, उसे अनघ होना चाहिए। अगर वह अनघ नहीं है तो कथा करने के लिए योग्य नहीं है। कथा वही व्यक्ति कर सकता है जो अनघ है, और अनघ का अर्थ होता है निष्पाप, निष्कपट, निरअपराध। क्योंकि वह स्वयं जब तक पापों से मुक्त नहीं हो सकता, अपराधों से मुक्त नहीं हो सकता, तब दुनिया वालों को सुनने वालों को कैसे मुक्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले कथा करने वाले को या उपदेश देने वाले को चाहिए, या किसी भी गुरु को चाहिए कि स्वयं पापों से मुक्त हो जाए, पाप करना बंद करे। और पाप का अर्थ जानते ही हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं मुख्य चार पाप है, कौन सा? मांसाहार करना। मांसाहार करना ये जो बहुत बड़ा पाप है, जुआ खेलना यह भी पाप है, किसी भी प्रकार का नशा करना यह भी एक पाप है, और अवैध स्त्री संग करना यह भी एक पाप है। तो जब तक यह चारों पापों से कोई मुक्त नहीं होता है तब तक वह अनघ नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु को या कथाकार को, वक्ता को चाहिए कि वह अनघ बने। सबसे पहले उसमें यह गुण होना चाहिए कि यह चारों पापों से वो मुक्त हो और किसी भी प्रकार का कपट न हो, तब जाकर वह व्यक्ति प्रवचन करने के लिए योग्य बनता है। रूप गोस्वामी इसे बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं, वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीर सर्वात्मीपा पृथ्वी स शिष्यात्। इस पृथ्वी में वही व्यक्ति किसी को शिष्य बना सकता है, वही प्रवचन कर सकता है, कथा कर सकता है, जो अपनी छह इंद्रियों को वश में कर सकता है। गिनाते हैं, सबसे पहले वाणी को जो कंट्रोल कर सकता है, वाचो वेगम, वाणी के वेग को जो कंट्रोल करता है, वश में रखता है, वह व्यक्ति गुरु बन सकता है। और केवल एक वेग को नहीं, छह वेग को, वाणी के वेग को, मन के वेग को। मन भी बहुत जगह पर भागता है, लेकिन अगर कोई उसे कंट्रोल में रखता है तब जाकर वह गुरु बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के, पेट के वेग को, और उपस्थ के वेग को, अगर कोई व्यक्ति यह छह वेगों को वश में कर सकता है, तो वह व्यक्ति एक दो को नहीं पूरे पृथ्वी में रहने वाले जीव को शिष्य बनाने के लिए योग्य है। और अगर कोई इन छह वेगों में से एक वेग को भी वश में नहीं कर सकता है तो वह गुरु तो क्या शिष्य बनने के भी योग्य नहीं है। क्योंकि शिष्य तब बना जाता है जब इन वेगों को वश में रखा जाता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए और खास करके जो वक्ता है जो उपदेश करने वाले हैं उसे चाहिए कि अनग बने। क्योंकि जब तक जीवन से पाप बंद नहीं होगा तब तक हमारा उपदेश कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है आप प्रवचन से बहुत कुछ सुनते होंगे और अपने अपनी जगहों पर जाकर बताते भी होंगे कि इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं। कम इसलिए है क्योंकि हम जो उपदेश दे रहे हैं वह सत्य है लेकिन हमारे जीवन में अभी पाप होना बंद नहीं हुआ है। जब तक हम पाप करना बंद नहीं करेंगे तब तक वह उपदेश भी कोई सुनेगा नहीं। खास करके जो माता पिता होते हैं उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे पुत्र गलत काम करते हैं भक्ति नहीं करते नहीं करते हैं। अरे आपके पुत्र तब अच्छे काम करेंगे जब आप अच्छे काम करोगे। आप ही भजन नहीं करते हो आप ही भगवान का नाम नहीं लेते हो आपके पुत्र कैसे लेंगे। उपदेश करने वाला ही जब पानी में डूबा हुआ है तब दूसरों को कैसे पानी से बचा सकता है। देखते हैं उपदेश करने वाले आज जितने भी उपदेश करने वाले संसार में तथाकथित उपदेश करने वाले हम देखते पान मावा सिगरेट खाते हैं। ब्राह्मण भी धोती और कुर्ता पहनकर घूमते हैं और मुंह में पान मावा चबाते हैं। अब खुद पान मावा से मुक्त नहीं हो सके तो इस दुनिया वालों को इस दुनिया की आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाएंगे बताइए। तो खास करके ब्राह्मणों को चाहिए उपदेश करने वाले को चाहिए कि वह अनग बने सुत गोस्वामी की तरह। अपने जो छह प्रकार के वेग है उसे वश में करे। नहीं हो सकता है वह अलग बात है लेकिन वेग को वश में करने के रास्ते में तो उसे निकल जाना चाहिए प्रयास होना चाहिए क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। हमारे जीवन में हमसे बहुत गलत काम हो जाते हैं नहीं चाहते हुए भी। अर्जुन का भी गीता में यही प्रश्न था अथ केन प्रयुक्तोयम् पाप चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्षयेन हे वृष्णिवंशी हे कृष्ण। जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो न चाहते हुए भी हो जाते हैं। ऐसे पाप जीवन में है जो हम नहीं चाहते हैं कि हम काम वासना या किसी भी प्रकार का पाप करें लेकिन न चाहते हुए भी यह हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो भगवान गीता में इसका उत्तर देते हैं कि इस काम के वेग को रोकने के लिए प्रयास तो होना चाहिए। पाप को बंद करने के लिए जब तक प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक बंद नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ये पाप है और अपने इंद्रियों के जो वेग है उसे बंद करे उसे रोके। क्योंकि जब तक वह बंद नहीं करता है इंद्रियों के वेग को तब तक वह जो कुछ भी सुन रहा है ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह जितने भी वेग वश में नहीं किए वहां से वह बह जाता है। तो जब तक उसे रोका नहीं जाएगा उस वेग को वेग बंद नहीं किया जाएगा तब तक यह शास्त्रीय ज्ञान हमें टिकेगा नहीं। प्रश्न होता है ना कि आप बताते तो बहुत कुछ हो लेकिन याद नहीं रहता है। क्योंकि जहां पर यह याद रहता है उसके द्वार आपने बिल्कुल खुले रखे हैं। जब तक द्वार बंद नहीं करोगे तब तक यह ज्ञान टिकेगा नहीं। और छह द्वार रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं वाचो वेगम वाणी का वेग। ये जो वाणी जो है वह भी एक द्वार है। फालतू बोलना बंद नहीं करोगे तब तक यह टिकेगा नहीं। वाणी क्रोध मन जिह्वा उदर और उपस्थ ये छह द्वारों को जब तक ठीक से कड़ी लगाकर हरिसन का ताला लगाकर बंद नहीं किया जाएगा, तब तक जितना भी सुना है वह हमारे दिमाग में और हृदय में अटेगा नहीं। और आज का सुना हुआ आज ही याद रखना चाहते हैं, आज ही वेग को बंद कर दीजिए, क्यों याद नहीं रहेगा। लेकिन भजन में आने के बाद भी इस वेग को रोकना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन साधक को चाहिए कि इसे रोके ताकि अपना जीवन उज्जवल कर सके। और इसमें केवल हमारा प्रयास की आवश्यकता है। भगवान अपनी ओर से सारी कृपा दे रहे हैं, साधु भी अपना संग दे रहे हैं, और जो संत होते हैं वे श्रवण कराते हैं, शास्त्र देते हैं, केवल हमें उसे करना है जो भी है हमारे हाथ में। ऐसा नहीं कि कोई हमारे जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, कृपा करेगा, तब कुछ पाप करना बंद करेंगे। नहीं, जो भी होना था हो गया, जो देना था भगवान ने दे दिया, इतना सुंदर भागवत का संग दे दिया आपको। अब जो भी बाकी है, जो भी कमी है, हमारी ओर से अब जो भी करना बचा है, हमें करना बचा है। तो जितने भी पाप है, जितने भी वेग है, उसे रोकना बहुत ही आवश्यक है ताकि शास्त्र के ज्ञान को अटा सके। तो शुद्ध गोस्वामी जो थे वह समस्त वेगों को कंट्रोल में किए थे, अनग थे, पाप रहित थे, दोष रहित थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो भी श्रवण किया था बिल्कुल भली भांति उसे याद था, इसलिए उसे अनग कहा जाता है। 88,000 ऋषि मुनि अनग कहते हैं, हे अनग। तो कहते हैं त्वया खलु पुराणानी से इतिहासानी व्याख्यत। हे अनग, हे सुत गोस्वामी, आपके द्वारा समस्त पुराण, इतिहास और धर्म शास्त्र, आपने समस्त पुराण, इतिहास और धर्म शास्त्रों को का अध्ययन किया है। सुत गोस्वामी ने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था। अध्ययन का अर्थ होता है अधिकार पूर्वक अयनम, किसी वस्तु को बार बार पढ़ते रहना उसे अध्ययन कहा जाता है। पढ़ना एक अलग चीज है और अध्ययन करना भी एक अलग चीज है। पढ़ना कैसा होता है पता है, जानते हैं आप? सत्यनारायण की कथा में बैठे हैं और कथा कराने वाले ब्राह्मण बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, और उनमें सुनने वाले खास करके स्त्रियां हो, माता जी या होती हैं, वो सोती रहती हैं। वो तो जब अध्याय खत्म होता है और जब घंटी बजती है या शंख बजता है इति श्रीमद् भागवते महापुराण, तब एक नींद लेकर वह स्त्री अपना सिर खड़ा करती है कि अध्याय खत्म हुआ। केवल पढ़ते हैं, उसमें कुछ क्या याद रहा नहीं रहा वो कुछ नहीं देखा जाता है। लेकिन अध्ययन का अर्थ होता है जब तक वह वस्तु हमारे हृदय में हृदयगम न हो जाए तब तक उसे बार बार रटते रहना, पढ़ते रहना, इसे अध्ययन कहते हैं। अधिकार पूर्वक अयनम, ग्रहण करना, बार बार पढ़ते हुए, रटते हुए। तो सूत गोस्वामी ने समस्त वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद और धर्म शास्त्र का भली भांति अध्ययन किया था। और केवल अध्ययन नहीं किया था, अध्ययन करने के बाद आख्याता, उसकी व्याख्या भी की थी। और व्याख्या तब हो सकती है जब अध्ययन होता है। प्रचारकों को ध्यान में रखना चाहिए, हम प्रवचन में बैठ जाएंगे, व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या तब दिमाग में आएगी जब कभी सुना है, उसे अध्ययन किया है, बार बार रटा है, तब जाकर यह खुलता है भगवान की कृपा से। तो 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं आपने पुराण, इतिहास और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के साथ साथ व्याख्या भी की है, अर्थात प्रवचन भी किया है इस पर। और इसका अर्थ यह कह रहे हैं कि प्रवचन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह प्रवचन, जो जिस विषय का प्रवचन करता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव उसके हृदय में होता है। तो इसका प्रभाव आपके हृदय में है क्योंकि आपने इसका अध्ययन किया है और व्याख्या की है, और इतना ही नहीं, अब देखिए कितना कह रहे हैं। आप सबसे पहले ये कहा कि आपने समस्त शास्त्रों का, धर्म शास्त्र का अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की, और यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनय सुत परावर विदो विदो। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि जितने भी मुनि हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी लोग हैं, ये सभी लोगों से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो है भगवान बादरायण। बहुत सुंदर इसे समझने की आवश्यकता है। परावर विदो विदु, पर का अर्थ होता है निर्गुण और अवर का अर्थ होता है सगुण। निर्गुण और सगुण को समझने वाले जितने भी ऋषि हैं, समस्त ऋषियों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है व्यास देव जी। यहां पर लिखा गया है अन्ये, अन्ये का अर्थ होता है कई सारे। धर्म शास्त्र को, वेदांत को लिखने वाले मुख्य छह लोग हैं, वह गौतम ऋषि, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र। इन छहों ने अपना अपना दर्शन लिखा है। किसी भी संप्रदाय का स्थापना करने के लिए शास्त्र के ऊपर एक दर्शन लिखना पड़ता है। तो ये छह लोगों ने अपना अपना संप्रदाय करने के लिए दर्शन लिखा है, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र। लेकिन यह छह लोगों ने यह दर्शन लिखने के बाद भी इनके दर्शन में यह नहीं है कि भगवान सगुण है या निर्गुण। ये लोग यह नहीं जान सके कि भगवान वास्तविक में निर्गुण है। लेकिन इस बात को व्यास, वेद व्यास जी जानते हैं, और वेद व्यास जी ने इस पर ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना की, और इस वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र की टीका है श्रीमद् भागवतम। इसलिए अगर कोई भागवत पढ़ता है और सुनता है तो उस भागवतम में जितने भी दर्शन है, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, ये सब कुछ आ जाता है। तो श्रीमद् श्री वेद व्यास जी भगवान के सगुण और निर्गुण रूप को भलीभांति जानते थे। वास्तविक में भगवान निर्गुण है, लेकिन इसका अर्थ इस संसार में कुछ संप्रदाय और साधु लोग करते हैं कि भगवान निर्गुण है, इसका अर्थ यह है कि भगवान का रूप है ही नहीं, भगवान के गुण ही नहीं है, भगवान का कोई रूप है ही नहीं, क्योंकि भगवान निर्गुण है। शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी कहते हैं भगवान निर्गुण है, तो इसका अर्थ लोग लेते हैं भगवान निर्गुण है अर्थात भगवान में गुण है ही नहीं, और भगवान में गुण नहीं है इसलिए भगवान निराकार है, एक ज्योति है। लेकिन ये मूर्ख लोग इसे कहते रहते हैं, वास्तविक में भगवान सगुण है। निर्गुण भगवान को कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस संसार के प्रकृति के जो तीन गुण है, यह तीनों गुणों से परे है भगवान। भगवान इस प्रकृति के तीन गुणों के अंडर में नहीं है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ईशोपनिषद से इसे बिल्कुल प्रकट किया जा सकता है। उपनिषद में, उस उपनिषद का एक मंत्र है कि ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है। ये तो सबको स्वीकारना होगा, भगवान पूर्ण है और भगवान से जो भी निकलता है वह भी पूर्ण है। तो यह संसार, यह सृष्टि और इस सृष्टि में रहने वाले लोग भगवान से निकले हैं, ठीक है। तो यह सृष्टि का आकार है कि नहीं, कि निराकार है? सृष्टि का आकार है, सृष्टि में रहने वाले जो लोग हैं उसका आकार है या नहीं? उसका भी आकार है। सृष्टि का आकार है, सृष्टि में रहने वाले लोग का आकार है, तो क्या जिससे यह सृष्टि निकली है उसका आकार नहीं होगा? उसका भी आकार है, लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं कि वह निराकार है। नहीं, भगवान का आकार है। और जो निराकार भगवान को कहते हैं वह ज्ञान में है। वास्तविक में ज्ञान, वास्तविक ज्ञान यह है कि भगवान साकार है, भगवान का एक रूप है, लेकिन हमारी तरह यह भौतिक गुणों की तरह भगवान का रूप नहीं है, भगवान का एक अपरिमेय आध्यात्मिक स्वरूप है। तो इस बात को वेद व्यास जी भलीभांति जानते हैं, यानी वेद विताम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। इस बात को बादरायण जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां पर वेद व्यास को बादरायण कहा गया है, यह भी समझ लेना चाहिए कि क्यों वेद व्यास जी को बादरायण नाम है वेद व्यास का। तो बादरायण वेद व्यास जी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वेद व्यास जी यह श्रीमद भागवतम की रचना बद्रीनाथ धाम में किए थे, तो बद्रीनाथ धाम में रहने के कारण बादरायण कहा जाता है वेद व्यास को। और भी कारण है इस नाम के, चूंकि वेद व्यास जी बेर के पेड़ के नीचे बैठकर ये भागवत लिखे थे, इसलिए भी वेद व्यास जी को बादरायण कहा जाता है। और बादरायण का अर्थ यह भी होता है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। वेद व्यास जी जिस बादरायण बद्रीनाथ में ये भागवत लिखे, जहां पर वह रहते थे, उस अरण्य उस जंगल में बद्री के पेड़ बहुत थे, इसलिए भी वेद व्यास को बादरायण कहा जाता है। और बादरायण के पुत्र को बादरायणी कहा जाता है, जो आगे भागवत में आएगा, श्री बादरायणी उवाच सुखदेव गोस्वामी के लिए। तो बादरायण वेद व्यास जी का नाम है। और इस प्रकार ये कहते हैं कि ये समस्त लोग जितने भी ऋषि हैं, सत और असत को जानने में, भगवान के रूप को जानने में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है भगवान बादरायण। और भगवान बादरायण वेद व्यास जी जो जानते हैं, उस वेद व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करके आप आए हो, आप वेद व्यास जी के प्रत्यक्ष शिष्य हो, इसलिए कृपया करके आप हमें कथा सुनाइए। और कहते हैं वेत्थम त्वम सौम्य तत्सर्वम। और वेद व्यास जी जो जो जानते हैं, वेद व्यास जी जितने भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके रखे हैं, क्योंकि वह साक्षात भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो साक्षात भगवान वेद व्यास जी जो भी जानते हैं, कहते त्वम तत्सर्वम वेत्थ, आप वह सब कुछ जानते हो। क्यों क्यों सुत गोस्वामी वेद व्यास जी और जितने भी ऋषि मुनि थे जो जानते थे वह सब कुछ जानते हैं? तो कहते हैं तत्वस्त तत् अनुग्रहात, क्योंकि वेद व्यास जी जैसे ऋषि मुनियों की कृपा आशीर्वाद था सुत गोस्वामी के ऊपर। वेद व्यास जी का जिन्हें अनुग्रह करके, कृपा करके सुत गोस्वामी को यह ज्ञान दिया था, तत् अनुग्रहात। और कृपा के कारण तत्व से, तत्सर्व तत्व तत्व से इस भली बात इस समस्त शास्त्रों को सुत गोस्वामी जानते थे। वास्तव में शास्त्र तभी समझा जा सकता है जब गुरु की अनुग्रहता हो, कृपा हो। जब तक गुरु और भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक शास्त्र को समझना बहुत मुश्किल है। गुरु की कृपा की आवश्यकता है। और गुरु तब कृपा करता है जब गुरु अपने शिष्य पर प्रसन्न होता है। गुरु अपने शिष्य को जब प्रसन्न कर लेता है और गुरु अपने शिष्य का जब प्रेमी बन जाता है, तब 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं ब्रुयु सिग्नस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। जब कोई शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है और वह गुरु अपने शिष्य के प्रति स्नेही बन जाता है, स्निग्धस्य, ये जो स्निग्ध शब्द है वह स्नेह से बना है, और स्नेह का अर्थ होता है जैसे तेल, घी और पानी। जैसे पानी को ऊपर से छोड़ा जाए तो वह बहता रहता है, घी भी बहता है, तेल भी बहता है। तो यह स्निग्ध पदार्थ है, तो जो बहता है उसे स्निग्ध कहा जाता है। और बहने का अर्थ है कि जो तेल, घी और पानी की तरह बहता है अपने गुरु के पीछे, अर्थात जो अपने गुरु के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलता है, उसे स्निग्धस्य शिष्यस्य कहा जाता है। ऐसे शिष्य को स्निग्ध शिष्य कहते हैं। जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, अपने गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करता है, वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन जाता है। अगर किसी गुरु का प्रिय बनना है तो गुरु के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, और अगर वह अपने गुरु का प्रिय बन गया तो 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, अगर वह शिष्य बन गया अपने गुरु का प्रिय तो कहते हैं गुह्यम अप्युत, तब वह गुरु गुह्य से भी गुह्य बात अपने शिष्य को कह देता है। गुरु अपने शिष्य को शास्त्र के धर्म का गुह्य तत्व तब बताता है जब वह अपने गुरु का प्रिय बन चुका हो, तभी जाकर गुरु अपने शिष्य पर अनुग्रह करते हैं और शास्त्र के गूढ़ रहस्य को खोल देते हैं। जब तक गुरु अपने शिष्य के प्रति कृपालुता नहीं दिखाता है, और शिष्य जब अपने गुरु के प्रति आदर नहीं रखता है, उनके आदर्शों का पालन नहीं करता है, तब तक गुरु शास्त्र को ठीक से खोलते नहीं है। इसलिए वास्तव में गुरु से गुह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आपने अपनी सेवा द्वारा अपने गुरु वेद व्यास, नारद मुनि, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, और उसे प्रसन्न करने के कारण उसके अनुग्रह से, उनकी कृपा से उन्होंने आपके सामने शास्त्र के गूढ़ रहस्य को खोल दिया, और आप उस शास्त्र के गूढ़ रहस्य को सुनकर बैठे हो, तो कृपया करके वह गूढ़ रहस्य आप हमें सुनाइए, ये सुनना चाहते। तात्पर्य यह है कि गुरु गूढ़ रहस्य हमें तब सुनाते हैं जब हम गुरु की सेवा करते हैं। यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे गुरु को प्रसन्न करें, और बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिलते। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, बिना गुरु की कृपा से कृष्ण मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल की बात छोड़ दीजिए, है मिलेंगे ही नहीं बिना गुरु की कृपा के। गुरु की कृपा होनी चाहिए और गुरु की सेवा होनी चाहिए। गुरु की कृपा तब मिलती है जब हम उनकी सेवा करते हैं, और जब गुरु की सेवा की बात याद आती है तब तो हमें नरोत्तम दास याद आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे गुरु परंपरा में एक बहुत बड़े भक्त हुए, और वास्तव में उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार गुरु की सेवा करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत धनी परिवार के पुत्र थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर लोकनाथ गोस्वामी के सानिध्य में वह रहने लगे, और उसे अपना गुरु मानते थे, और गुरु मानते हुए लोकनाथ गोस्वामी की ऐसी सेवा किए, ऐसी सेवा किए। लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह 4 बजे उठते थे, और 4 बजे उठकर वह शौच आदि क्रिया करके नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, और नदी में स्नान करके वापस आकर साधना, भगवान की सेवा, पूजा इत्यादि करते थे। तो यह नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की सेवा करने के लिए वह गुरु जी के पहले उठ जाते थे। ये एक सिद्धांत है शास्त्र का कि शिष्य को अपने गुरु से पहले उठना चाहिए, और रामायण में तो ये बिल्कुल तुलसीदास जी बिल्कुल इसका वर्णन बहुत सुंदर प्रकार से करते हैं। सुनना है, चलना है रामायण, ठीक है सुनते हैं, क्योंकि रामनवमी इसी महीने में है। जब विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेकर गए अवधपुरी से, अयोध्या से, क्योंकि ताड़का और सुबाहु नाम के असुर विश्वामित्र को अपने हवन में यज्ञ में बहुत ही विघ्न पहुंचा रहे थे, तो यज्ञ ठीक से संपन्न करवाने के लिए लक्ष्मण और भगवान श्री रामचंद्र को लेकर गए। लेकर जाकर भगवान श्री रामचंद्र ने ताड़का और सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फर का बाण मारा और सात समुद्र के पार जाकर गिराया, और आगे चलकर अहल्या का उद्धार करते हुए, अहल्या उद्धार सुनना है तो अगले शुक्रवार को तुलसी टावर में आ जाइए, अहल्या उद्धार कथा होगी। तो अहल्या उद्धार करते हुए विदेह राज राजा जनक का आमंत्रण आया था विश्वामित्र को कि हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, कृपया करके आप पधारे। तब विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में गए, और जनकपुर में जाकर महल से थोड़े दूर एक कुटिया में रुके। तो वहां पर एक बहुत सुंदर कथा आती है कि उस कुटिया में रहते हुए भगवान श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र के की पूजा करते थे। अब देखिए, भगवान स्वयं भगवान है और भगवान होते हुए भी वो किसी का चरण दबा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपनी आचरित जीवे रे सिखाए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस संसार में आकर सिखाए कि किस प्रकार गुरु की सेवा होनी चाहिए। हालांकि भगवान को किसी के चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिखाते हैं हम जैसे पापी जीवों को कि किस प्रकार गुरु के चरण पकड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र के चरण दबाते थे, और एक दो घंटा नहीं, आज तो कोई चरण दबाने को कहेगा कि तो होता है कब ये गुरु कहे कि बंद करो अभी। होता है, माता पिता अपने पुत्र को अक्सर कहते हैं कि चरण दबाओ, तो माता पिता बच्चा पूछता है या पत्नी अपने पति को पूछते बस बस करो अभी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते थे, भगवान थे लेकिन फिर भी अपने गुरु विश्वामित्र के चरण दबाते थे। दबाते दबाते रात हो जाती थी, रात के 11-12 बज गए, और गुरु जी कहते थे कि राम बस अभी बहुत हो गया, बस अब छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते थे थोड़ी देर और दबाने दीजिए, थोड़ी देर और दबाने दीजिए। तो ऐसे 10-11-12 बज गए, और 12 बज गए, विश्वामित्र जी ने कहा कि बस राम अब बहुत हो गया, अब तुम जाओ। तो 12-12:30 बजे भगवान श्री रामचंद्र अपनी कुटिया में अपने आसन पर आते थे और भगवान अपने आसन पर लेटते थे। तो भगवान जब लेटते थे तब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करते थे। 12 बजे भगवान 12-12:30 बजे अपनी कुटिया में आए और सोए। अब लक्ष्मण जी अपनी सेवा शुरू किए, भगवान रामचंद्र की सेवा की। तो लक्ष्मण जी चरण दबाते रहते थे, दबाते रहते थे। राम कहते थे बस लक्ष्मण अब बहुत हो गया। तो दबाते 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 12 बज गया, 1 बज गया, 2-2.5 बजे तक लक्ष्मण जी चरण दबाते थे, क्योंकि भक्त थे, भाई थे बड़े, और गुरु भी थे। तो इस प्रकार से 2-2.5 बजे तक लक्ष्मण जी चरण दबाते थे, और दबाते दबाते चरण दबाते दबाते वहीं पर ही सो जाते थे। तो इस प्रकार पहले गुरु जी सोते, विश्वामित्र सोते थे, फिर रामचंद्र सोते थे, और बाद में 2 बजे लक्ष्मण जी सोते थे। तो सोने का क्रम जो था, पहले विश्वामित्र जी का था, बाद में रामचंद्र जी का था, और बाद में लक्ष्मण जी का। और जब सुबह होती थी तो उठने का क्रम बिल्कुल उल्टा होता था। अब जो पहले सोए है विश्वामित्र, उसे पहले उठना चाहिए, लेकिन देखिए सिखाते हैं हमें कि सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ जाते थे। भले वह 2 बजे सोए हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, 1-1.5-2 घंटा सो के लक्ष्मण जी पहले उठते थे, बाद में रामचंद्र उठते थे, रामचंद्र अपने गुरु से पहले उठ गए, और बाद में विश्वामित्र जी उठते थे। ये है आपनी आचरित जीवे रसिखाए। इस प्रकार से गुरु से कहां आ गया, गुरु से पहले उठना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के पहले उठ जाते थे, और पहले उठकर जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया करके लेटरिन करके नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुजी के जो भी मल और सबको उठाकर वहां पर साफ सफाई करके जब तक वो लोकनाथ गोस्वामी वापस न आ जाए तब तक वो सब कुछ साफ सफाई करके रख देते थे। तो ऐसा एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन, दो चार महीना हो गया। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं कि जब सुबह उठकर जाता हूँ सब कुछ खिन्न भिन्न होता है, और मैं लेटरिन करके शौच क्रिया करके जाता हूँ और वापस आता हूँ तो सब कुछ क्लियर है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा मन ही मन में कि ब्रजवासियों से सेवा करवाना ठीक नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि अब देखना चाहे कि ये कर कौन रहा है। तो लोकनाथ गोस्वामी एक बार शौच क्रिया करके गए और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। तो जैसे ही पेड़ के पीछे छिप गए और छिप कर देखा कि क्या हो रहा है, कौन आकर यह साफ कर रहा है, तो नरोत्तम दास आए झाड़ू लेकर, और झाड़ू लेकर फटाफट वहां सब कुछ साफ करने लगे। अपने गुरुजी का जो मल था वह भी साफ करके बिल्कुल साफ कर दिए, और लोकनाथ गोस्वामी देखे कि उस झाड़ू से सब कुछ साफ कर वह झाड़ू अपने हृदय में लगाकर आंखों से अश्रु धारा निकालकर रोते हुए अपने गुरुजी का स्मरण कर रहे थे कि हे गुरुजी, कब आप मेरे पर कृपा करोगे, कब अनुग्रह करोगे, कब अनुग्रह करोगे, इस प्रकार से वह रोते थे। ये है एक शिष्य का कर्तव्य, ये है एक गुरु की सेवा। और उसी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, भक्ति प्रदान करने वाले अगर कोई है तो वह श्री गुरु जी के चरण ही, गुरुदेव के चरण ही केवल हमें भक्ति ज्ञान इत्यादि सब कुछ दे सकते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिलना, गुजराती में तो एक कहावत है, जाड़ बिना पान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए, बाद में मेरी। प्रथम अस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम्। सबसे पहले प्रथम गुरु की पूजा करो, तत्पश्चात मम अर्चनम्, मेरी अर्चना मेरी पूजा करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, कुछ लोग होते हैं जो गुरु गुरु को नहीं मानते हैं, डायरेक्ट कृष्ण के साथ संबंध, डायरेक्ट भगवान से मिलेंगे। अब गुरु की क्या जरूरत है, पता है कि माला का जप करना है, मां मंत्र ही तो जपना है, भागवत पढ़ना है घर पे पढ़ लेंगे, भगवत गीता है घर पे पढ़ लेंगे, क्या आवश्यक है गुरु की। लेकिन देखिए भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मेरे से पहली पूजा प्रथम मस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्पणम मम अर्चनम। पहले गुरु की पूजा करो, बाद में मेरी। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, कुर्वन सिद्धिम अवाप्नोति, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर रहा है अन्यथा निष्फलम भवेत, वह जो भी उसका फल है वह फल प्राप्त नहीं कर सकता है, अपने कार्य का निष्फल होगा जब तक वह गुरु को प्रसन्न नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक साधकों को चाहिए कि अपने गुरु को प्रसन्न करे। सुध गोस्वामी यहां पर अपने गुरु वेदव्यास को, नारद मुनि को प्रसन्न कर लिए थे उनकी सेवा से, और प्रसन्न करने के कारण नारद मुनि वेदव्यास जी कृपा आशीर्वाद दिए थे, और उस आशीर्वाद के कारण यह ज्ञान हुआ। ऐसा नहीं बुक लेकर बैठा है कि पढ़ो बेटा, नहीं। अब क्या पढ़ेंगे और लिखेंगे, जब तक कृपा नहीं होती कुछ प्राप्त नहीं होता, और जब कृपा हो जाती है तब कुछ ये पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कृपा हुई ब्रह्मा जी पर भगवान विष्णु की, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, केवल भगवान ने देख लिया, सारा शास्त्र और वेदों का ज्ञान आ गया ब्रह्मा जी में। कृपा किया भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज के ऊपर, अपने कपोल गाल पर एक शंख का स्पर्श कर दिया, सारा ज्ञान ध्रुव महाराज को हो गया। इस प्रकार से भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान के जो वाहन है गरुड़, गरुड़ भी जब अपना पंख फड़फड़ाता है तो उस पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। भगवान के संपर्क में जो आ जाता है, जिस पर कृपा हो जाती है गुरु और भगवान की, उसे पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ने और लिखने की तब तक जरूरत है जब तक कृपा नहीं मिलती है। ये सब कृपा प्राप्त करने के लिए हो रहा है, इसलिए सभी साधकों को कृपा सिद्ध बनना चाहिए। बिना कृपा के सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कृपा होनी चाहिए। तो कृपा तब मिलती है जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं। तो प्रश्न हो सकता है, गुरु को कैसे प्रसन्न करेंगे हम? तो एक सीधा रास्ता है, अगर गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो, कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की भक्ति करने से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो तो कृष्ण की भक्ति करो, और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो गुरु को प्रसन्न करो। तात्पर्य यही है कि महामंत्र जपो, गुरु और भगवान दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे,
महामंत्र जपने से गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो यही है सार और सिद्धांत। और इस प्रकार से गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त करके शुद्ध गोस्वामी आए हैं, और 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सबके अनुग्रह से कृपा से आप में सारा ज्ञान है। तो कृपया करके आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगले बुधवार से पहला प्रश्न प्रारंभ होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर हमारे लिए। हमारे जीवन में जो मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं वही प्रश्न है, करीबन 6-8 प्रश्न है, और उसका उत्तर भी आएगा। तो हम अगले सोमवार से ये प्रश्न प्रारंभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम
हरे हरे। तो इस प्रकार से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, और उसके लिए महामंत्र जपना चाहिए। सार ये, और महामंत्र जपने से ही भगवान और गुरु प्रसन्न होंगे, और इसी से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है और सुख प्राप्त हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। हरे कृष्णा। अक्रूर जी लेने के लिए आए वृंदावन से, तब मथुरा गए, तो वहां से द्वारका क्यों गए, यही प्रश्न है ना। तो मथुरा में कंस का वध किए, और कंस का वध करके अपने जो जन्म देने वाले माता पिता है उसे कंस के कारागार से मुक्त करवाए। देखिए, देवकी और वसुदेव इतने दुखी थे, अपने आगे इतने पुत्रों का वध कर दिया था कंस ने, तो देवकी और वसुदेव ने अब चाहा कि अब तो कुछ दिन हमारे साथ यह कृष्ण रहे। तो देवकी और वसुदेव उसे अपने साथ मथुरा रखे, ठीक है, मथुरा में रखे। फिर देवकी और वसुदेव ने उसे पढ़ाया लिखाया, सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा, और पढ़ लिखने के बाद जब वापस आए, तो वापस आने के बाद एक जरासंघ नाम का असुर था, वह कृष्ण से युद्ध करने के लिए आता था, और कितनी अक्षौणी सेना लेकर आता था, कुछ 21 या 22 अक्षौणी सेना लेकर जरासंघ कृष्ण और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए आता था। तो मथुरा में यह बहुत ही प्रचंड युद्ध होता था, एक और केवल कृष्ण और बलराम, और एक और जरासंघ, ये पूरे दुनिया विश्व भर के जो असुर थे सबको जुटा कर आता था कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध करने के लिए। तो युद्ध होता था, कृष्ण और बलराम सारी सेनाओं को मार देते थे, लेकिन जरासंघ को छोड़ देते थे। और जरासंघ को जब छोड़ दिया जाता था, लज्जित हो जाता था कि दो ग्वाले के हाथों से मेरी सारी सेना चली गई और मुझे छोड़ दिया, तो लज्जित होकर वो वैराग्य प्राप्त करके जब जंगल में जाता था तो कुछ लोग मिलते थे उसे कि क्यों जंगल में जा रहे हो, इस प्रकार हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हम आपके साथ हैं, चलो और हम सेना जुटाएंगे और युद्ध करेंगे फिर से। तो फिर से जरासंघ 4-5-10 साल के लिए इस दुनिया में जितने भी असुर थे सबको एकत्रित करता था और एकत्रित करके फिर से युद्ध करने के लिए आता था, और फिर से कृष्ण और बलराम सारी सेनाओं को मार देते थे, जरासंघ को छोड़ देते थे। तो इस प्रकार जब जरासंघ वैराग्य प्राप्त करके जाता तो कुछ लोग उसे मिल जाते तो सबको जितने भी असुर थे सबको एकत्रित करते। तो प्रश्न होता है कि कृष्ण और बलराम जरासंघ को क्यों छोड़ देते थे। कृष्ण और बलराम ने सोचा, क्या हम दुनिया भर में घूम घूम कर असुरों का वध करेंगे? अब आए हैं असुरों का वध करने के लिए, तो दुनिया में घूम घूम कर असुरों का वध करने से अच्छा है कि यही जुटा कर लाता है सबको और हम हमारे घर पर मथुरा में बैठे बैठे सबको मार देंगे। तो बहुत अच्छा कारण मिल गया था। तो इस प्रकार कई बार जरासंघ ये सबको लेकर आया लेकिन कृष्ण और बलराम उसे छोड़ देते थे। तो एक बार जरासंघ ने सोचा कि ये कृष्ण जो है गौ ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा नमे भक्ता प्रणश्यति। तो एक बार जरासंघ ने कई सारे ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन करवाने के लिए बुलाया, सभी ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा भोजन खिलवाया, दान दक्षिणा की और सबको प्रणाम करके मांगा। सब ब्राह्मणों ने कहा, क्या चाहिए? तो जरासंघ ने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि इस बार कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध में मैं न हारूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हारूं नहीं इस युद्ध में। अब तो जरासंघ के डर के मारे ब्राह्मणों को आशीर्वाद देना पड़ा कि आप विजय हो जाओगे। अब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे लेकिन अपने भक्त ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा कैसे तोड़े? ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया है कि जरासंघ विजयी होंगे। तो ब्राह्मणों ने कृष्ण को लेटर लिखा कि प्रभु, अब अगर आप जरासंघ को इस बार नहीं जीतने दोगे तो ये जरासंघ ने यह भी कहा कि अगर मैं नहीं जीतूंगा सब मुझे आशीर्वाद दो, और अगर इस बार मैं नहीं जीता तो तुम सब ब्राह्मणों को मार डालूंगा। दिया ब्राह्मणों ने आशीर्वाद और कृष्ण को भी कहा कि इस बार इसे मत हारने देना नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बार जब जरासंघ युद्ध करने के लिए आया तो सेनाओं को तो मार दिया कृष्ण और बलराम ने, लेकिन अब जरासंघ को जीता ना था इसलिए कृष्ण और बलराम उस शुरू युद्ध में उस युद्ध के मैदान को छोड़कर भागे। बहुत भागे, जरासंघ को भगाए, कितने पहाड़ों को लांग कर, फोटो है श्रीमद भागवतम में, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर फोटो दिखाए हैं, कृष्ण और बलराम बहुत बड़े पहाड़ से कूद रहे हैं, हजारों हजारों पहाड़ों को कूद कर लांग करके कृष्ण और बलराम भाग गए। इसका अर्थ हुआ, यह अर्थ यह हुआ कि कृष्ण और बलराम युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और जरासंघ में विजय हो गया। इसलिए ब्राह्मण बच गए, जरासंघ मन ही मन में विजय प्राप्त कर लिया और कृष्ण बलराम मथुरा नगरी छोड़कर भागे। और जरासंघ के भय से कि जरासंघ अब हमारे साथ युद्ध करने के लिए न आए, इसलिए कृष्ण और बलराम ने समुद्र के बीच में अपना घर बनाया, अपना फ्लैट, किसी छोटी सी गटर के ऊपर नहीं, समुद्र के बीच में एक फ्लैट बनाया, बहुत बड़ी नगरी बनाई जिसे द्वारका कहा जाता है, और द्वारका नगरी में वह रहने लगे। यह है छोटी सी कथा। ठीक है, प्रश्न और कोई है? समय को ध्यान। और संसार के सागर को पार करने के लिए किसी अंधे का हाथ पकड़ लिया तो अंधा तो सागर में डूबने वाला है लेकिन जो हाथ पकड़ा है उसका वह भी जाएगा। तो इसे लाखों लोग जिस जाते हैं वहां पर जो बेकार गुरु के पास, वो गुरु तो नर्क में कंफर्म है लेकिन वो हजारों को लेकर जाएगा। ये साथ में जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार के सागर में डूबते हुए बचने के लिए कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ ले तो गुरु और चेला दोनों, कुत्ता और वो व्यक्ति दोनों सागर में डूब जाएंगे। वैसे यहाँ पर अगर कोई ऐसे गुरु का पांव पकड़ ले तो दोनों जाएंगे, चेला भी गया गुरु भी गया, दोनों को नाम निशान करता, दोनों नरक में, अब नरक में बैठेंगे प्रवचन करेंगे। यह बातें हैं तो वो आप उसे आप गुरु बना सकते हो, अगर गुरु में ये नहीं है तो गुरु नहीं बना सकते। सुनना है कौन सी बात, शॉर्टकट में बता देता हूं। सबसे पहली बात कि वह गुरु कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए। दूसरी बात कि वह गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। ये दूसरी योग्यता, अगर आपको गुरु बनाना है तो उसमें यह चीज है कि नहीं यह देख लेना है। अगर यह है बना लीजिए भक्त अपना गुरु, पहले वह कृष्ण का शुद्ध भक्त, दूसरा अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए वह, तीसरा वह गुरु जो बोलता है वह उपदेश अपने जीवन में पालन करते होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों को कहता है कांदा लहसुन प्याज नहीं खाना है और अपने घर पे कांदा पकता है प्याज बनता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी योग्यता गुरु बनने की। चौथी कि वह अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वाणी जीवा जो मैंने आपको प्रवचन में बताया, इसका अर्थ है कि गुरु पान मावा नहीं खाना चाहिए या चाय कॉफी नहीं या गांजा नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए गुरु को। ये है गुरु की योग्यता, ये भागवत शास्त्र कहता है। और चौथी पांचवी योग्यता कि वह गुरु संप्रदाय के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय के अंतर्गत वह परंपरा में अगर हो तो ही वह गुरु बन सकता है, नहीं तो नहीं है उसमें, तो आप बना सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हमने गुरु बना लिए हैं अब क्या किया जाए, अब जो आपने बनाए वह गुरु गुरु है ही नहीं, नाम केवल स्टैंप एक थप्पा है मार दिया है यहाँ पर, गुरु नहीं है वो। भागवत में भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं गुरु न शिष्यात् स्वजनन न शिष्यात् न मोचयनन समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान के धाम में न पहुंचा दे। आज के गुरु दीक्षा देने के बाद दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, मिलते हैं किसी को और जो करो वो करो, आप जो भी कर सकते हैं, ये वो गुरु नहीं है। और सिंपल बात है, अगर कोई ऐसे गुरु कर लिए हैं और अच्छे गुरु करना चाहते हैं तो उसे कोई दोष नहीं है। भागवत शास्त्र कहता है कि अगर कोई गलत गुरु बना लिए हैं तो उसे चाहिए कि उसे पुनः शास्त्र के आधारित जो मैंने आपको योग्यता बताई ऐसे गुरु स्वीकार करें। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसे ठीक गुरु बना लेना चाहिए तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।